ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंध दसवां अध्याय श्लोक नंबर 6। अहम् काम भक्ता स्वम नापश्रया नान्या ते हता हो गयो अर्थो राजा सेवा कयो इवा अहम काम स्वद्भक्त त्वं च स्वं अनापश्रया अन्यथे हयोरर्थो राजसेवकयोरिव।
तम च स्वान्नपाश्रय नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव।
माताजी शब्दार्थ,
अहम जहां तक मेरा संबंध है तू निसंदेह, अकाम बिना भौतिक इच्छा के, तत्भक्त निष्काम भाव से आपके प्रति पूर्णतया आसक्त, तुम च आप भी स्वामी असली मालिक, अनपाश्रय निष्काम भाव से, ना नहीं अन्यथा सेवक से विजय से, सेवक से विजय से संबंध के बिना, यह यहां आवयो हमारा अर्थ किसी स्वार्थ के, भगवान शुद्ध स्वामी हैं और प्रहलाद महाराज निस्वार्थ शुद्ध भक्त हैं। राजा राजा का सेवकयो तथा सेवक इव सदृश, जिस तरह राजा सेवक के हेतु, जिस तरह राजा सेवक के लाभ हेतु कर लेता है या जनता राजा के हेतु कर देती है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। अब दोहराएंगे, हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ, आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीव रस स्वरूप है कृष्ण न नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय श्लोक 29 में कहते हैं, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोकई महेश्वरम, मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो वह आदेश देता है तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता है तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है सदैव अधीन और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय है, अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे हुए इसे नहीं जानते। नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानं समर्चनम। पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपी भर्तु पद कमलोर दास दासानुदास। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास बना लें। भक्ति की यह निर्दिष्ट विधि है। जब ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है तेव ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकतावादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक से भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता।
ओम ज्ञान स्मरणस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोवेष्टम् स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वाहा। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्तवन। हरे कृष्णा अहम कामस्त्वद् भक्तः स्वम अनपश्रया नान्या से धैयोर अर्थो राजा से मकोरी हुआ। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं महान भक्त प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की पिछले इतवार को भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ नृसिंह चतुर्दशी मनाई थी। तो प्रहलाद महाराज भगवान के प्रिय भक्त हैं और उन्हें महाजन माना जाता है। शास्त्रों में 12 धर्म के अधिकारियों का वर्णन है। सही मुन्नादा शंभु कुमार कपिल मनु इनमें एक है प्रहलाद। तो जैसे आप जानते हो प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। क्या था उनका दोष? उनका दोष केवल एक ही था, वो था कि उनका बड़ा गहरा आकर्षण था भगवान के प्रति। उनके पिता कभी ये समझ नहीं पाए कि मेरे बेटे को ये दिव्य ज्ञान कहां से आ रहा है। एक दिन पिता ने प्रहलाद के अध्यापकों को बुलाया, जिनका नाम था सुंदर मर्क, और कहा तो अपनी सेवा ठीक नहीं कर रहे, ये वैष्णव छुप के आते हैं और मेरे बेटे का दिमाग घुमा देते हैं। सुंदर मर्क ने कहा हम ब्राह्मण हैं, आप हमें ऐसे दोष नहीं दे सकते, हमें खुद नहीं पता प्रहलाद को कौन ये ज्ञान दे रहा है। तो प्रहलाद ने ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ, जब वो माता के घर में थे, क्योंकि उस समय उनके पिता मंडारा पर्वत में बहुत भारी तपस्या कर रहे थे। आप लोग योगा करते हो, अगर आपसे पूछा जाए खड़े हो जाओ, हाथ और उठाकर अपने पांव के अंगूठे पर, कितनी देर खड़े रह सकोगे? 10 मिनट। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यपु अपने पांव के अंगूठे पर खड़े हुए, हाथ आकाश की ओर, पूरा शरीर चींटियों से भरा हुआ था, और कितनी देर के लिए? देवताओं के 100 वर्षों के लिए। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। तो देवताओं के 100 वर्षों के लिए इस स्थिति में खड़े गए खड़े हुए, ये कोई छोटी तपस्या नहीं है। तो प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव करने पड़े। पहाड़ को प्रहलाद के पिता ने प्रयास किया था कि प्रहलाद का आकर्षण समाप्त हो जाए। सुंदर मर्क ने एक दिन पिता को कहा अब हमने आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है, अजमा के देख लो। तो बाप ने बेटे को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और पूछा बेटा ये बताओ कि जो अनेक विषयों का ज्ञान तुम प्राप्त कर रहे हो अपने पाठशाला में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, कौन सा विषय था? प्रहलाद पिता ने सोचा था बेटा कहेगा आप हो सर्वश्रेष्ठ, और बेटे ने नर्मदा भक्ति का उच्चारण कर दिया, और जिसके कारण पिता को इतना क्रोध आया कि पिता ने बेटे को अपने अपने गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। एक समय हिरण्यकश्यपु ने अपने नौकरों को कहा ले जाओ इसे पहाड़ की चोटी पर और वहां से फेंको। तो उनके सेवक प्रहलाद को रस्सी से बांधकर ऊपर तक ले गए। ऊपर जब ले गए तो प्रहलाद को फेंका पहाड़ की चोटी से। प्रहलाद विष्णु 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 कहते गए और नीचे पहुंच गए बिना किसी चोट के। एक समय उन्हें सागर में फेंक दिया था। तो सागर में फेंका, सागर ने प्रहलाद को उठाकर इतनी अपनी ऊंची लहरों के ऊपर रख दिया, और ऊंची लहरों के ऊपर रखकर वो लहरों ने सब प्रहलाद को नदी के किनारे पहुंचा दिया बिना किसी कष्ट। उन्हें जहर भी खिलाई, सांपों जहरीलू सांपों ने घेरा, भारी हाथी चले उन पर, जब भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और अंत में प्रहलाद के पिता को जब सूचना मिली कि ये क्लास के सारे विद्यार्थियों का दिमाग बदल गया है, सुंदर मर्क घबरा गए। सुंदर मर्क ने देखा प्रहलाद ही नहीं, प्रहलाद के जितने मित्र थे सबका दिमाग विष्णु के प्रति आकर्षण हो गया है। तो फिर अंत में सुंदर मर्क के पास कोई उपाय नहीं था, उन्होंने हिरण्यकशिपु को यह सूचना दी, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत प्रयास किया है पर हम असफल रहे हैं, आपके बेटे के पास कोई गहरी शक्ति है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा देखने दो क्या गहरी शक्ति है। और जब हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटे से ये शक्ति कहां से आती है तुम्हें, बेटे ने कहा है पिता उसी स्थान से जहां से आपको शक्ति आती है। एक रूप से देखा जाए नास्तिक और आस्तिक दोनों व्यक्तियों की शक्ति तो भगवान से ही आ रही है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपहानम चा, मैं स्मरण का कारण हूं और अपहानम, अपहाना मतलब भूलने का कारण हो। तो अंत में भगवान प्रकट हुए किस रूप में, इसके देव के रूप में, जिसके द्वारा उन्होंने प्रहलाद के ब्रह्मा के सारे वरों का पालन किया। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए थे, ना दिन में मृत्यु होगी ना रात में होगी, ना किसी पशु के द्वारा ना मनुष्य के द्वारा, ना सागर में ना पृथ्वी में, तो ना अंदर या बाहर, तो कहां हुई उनकी मृत्यु, भगवान की गोद में। हिरण्यकश्यपु ने पूछा ना किसी हथियार के द्वारा ना पशु या मनुष्य, वो भूल गए पूछना कि नाखून के द्वारा, तो उनकी मृत्यु हुई नाखून के द्वारा। और उनकी मृत्यु हुई कहां, बिल्कुल द्वार पर, ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल कमरे में जाने के द्वार पर। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में इस विषय पर कहा था लॉस एंजलिस में कि ब्रह्मा जी भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात हिरण्यकश्यपु से कहा ऐसे वर भविष्य में मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया था। कि भगवान को ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए वध करना पड़ा इस असुर का। तो प्रहलाद के कहा प्रहलाद को अपनी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। हम भगवान के प्रचार के संबंध में हम सबको कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आप देखो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी को लगभग 40 साल का प्रयप्रंग संघर्ष करना पड़ा, कोई एहसान कार्य नहीं था। और इस्कॉन संस्था जिसकी गोल्डन जुबली आप अगले साल मनाओगे, ये साल हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद चले थे भारत से और विश्व के कई देशों में भक्तों को बहुत ही गहरी तपस्या उठानी पड़ी थी कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। आपके हरे कृष्ण लैंड में भी जब भक्त पहले आए थे कोई रहने का स्थान नहीं था, हर जगह चूहे थे। तो भगवान के प्रचार के दौरान अगर हमें कष्ट भी सहना पड़े तो हमें उसे भगवान की असीम कृपा स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। इन श्लोकों में प्रहलाद भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो मुझे क्या वर चाहिए, मेरे लिए कोई वर असंभव नहीं है। तो प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद ने कहा हे भगवान आप मुझे किसी वर से आकर्षित मत करो क्योंकि मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। प्रहलाद कहते हैं जो भक्त सेवा के बदले में किसी प्रकार का वर की उम्मीद करता है वो व्यक्ति क्या है, वो है व्यापारी। मैं आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। वैसे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन है चार परिस्थिति? धन चाहिए तो आप लोगों को शायद धन नहीं चाहिए, जैसे धन चाहिए। ज्ञानी, रोगी, पीड़ित, जिज्ञासु, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ज्ञान के आधार पर आता है। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, चाहे आप भौतिक इच्छाओं से जुड़ो, अगर आप श्रद्धा से प्रयास करोगे तो ये भौतिक इच्छाएं भी समाप्त हो सकती हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा है, हे भगवान, आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक वर मत दो। और ये क्या कह रहे हैं श्लोक में, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। तो ये है सबसे उत्तम भक्ति, जब आप भगवान की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करना चाहते हो। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, और आप हो मेरे स्वामी। प्रभुपाद जी इन श्लोकों में ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं। ध्रुव महाराज की कथा आप भगवतम के चौथे स्कंद में पढ़ते हो। श्रीमद् भागवतम में भगवान उनके भक्तों की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। और अगर हम गहराई के साथ इन विषयों का स्मरण करें तो आध्यात्मिक परिवर्तन सरल हो जाता है। जैसे भगवतम में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव का वर्तलाप पड़ेगा उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो हमें नियमित रूप से इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, इन लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए। जब हम आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करें तो उसे हम कहते हैं कृष्णा कथा। और जब हम भौतिक विषयों की चर्चा करें उसे क्या कहते हैं? प्रजल्पा। प्रजल्पा हमारा शत्रु है, कृष्ण कथा हमारा मित्र है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कृष्ण कथा में रुचि लें। तो प्रहलाद ध्रुव महाराज ने अनेक प्रकार के कष्ट उन्हें भी सहने पड़े थे और अंत में उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान ने कहा, मांगो मेरे से ध्रुव क्या वर चाहिए। ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा आपके भक्तों के संग में रहूं, मुझे सदा आपके उत्तम भक्तों की संगत मिले, ऐसा वर दीजिए। इसी अध्याय में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो भक्त सेवा के बदले में भौतिक उम्मीद रखता है, मुझे ये लाभ होना चाहिए, ये पद मिलना चाहिए, ये आर्थिक लाभ होना चाहिए, वो व्यक्ति कौन है? व्यापारी। और उसी प्रकार जो स्वामी ये सोचता है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा शिष्य है, इसके कारण मुझे ये आदर प्राप्त होगा समाज में, तो वो स्वामी भी क्या है? व्यापारी है। अब स्वामी को ये सोचना चाहिए, ये सेवक भगवान ने भेजा है, किसका है? ये भगवान का असली सेवक है, ऐसे उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो। क्या कहा प्रहलाद ने? तो कितने भक्तों की इच्छा है कि ऐसा वर की सारी भौतिक इच्छाएं आपकी जल जाएं तुरंत? कोई नहीं हाथ उठा रहा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण ना हो। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए। इसी विषय पर चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। जो भक्त निस्वार्थ निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो सदा शांत रहते हैं, और इसकी तुलना में जो भक्त सदा भौतिक इच्छाओं को की उम्मीद रखते हैं वो सदा अशांत रहेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक के अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सबका असली कर्तव्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर क्या कहा, जुरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यदार। हम सबका स्वाभाविक रूप यह है कि हम भगवान की सेवा में रहें। जो शुद्ध भक्त है वो केवल यही संदेश देता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उस समय अमेरिका में कई स्वामी महात्मा भारत से निकले थे और आज भी निकलते हैं धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि भक्ति विनोद स्वामी शुद्ध भक्ति का संदेश दे रहे हैं तो घबरा गए। तो प्रभुपाद जी से कहने लगे, स्वामी जी ये संदेश आप दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा, आप ये हमारे जैसे पद्म कमीज पहनो और योगा का चर्च की चर्चा करो। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो केवल शुद्ध संदेश देते हैं। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम सबका स्वाभाविक कर्तव्य क्या है कि हम भगवान के सेवक रहें। तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, पुरुष या स्त्री, हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में रहें। जैसे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन मेरा चिंतन करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए। तो ये है प्रहलाद महाराज का निचोड़। जब प्रहलाद महाराज स्कूल में थे उनके मित्रों का भाव था खेलो, प्रहलाद ने क्या कहा, नहीं कौमारा चट प्रज्ञ, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, मान लो आप 100 साल तक जीते हो, पहले 10 साल तो चले जाते हैं खेलने कूदने में, फिर आधी जिंदगी चले जाती है सोने में, अंतिम 20 साल बीत जाते हैं किसने बुढ़ापेपन में, और बुढ़ापेपन के साथ चिंता, अब आज ये बीमारी है कल कौन सी बीमारी आएगी, है ना। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं समय का सदुपयोग करो। वो कहते हैं चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आपको उतना ही सुख प्राप्त होगा जो आपका कोटा है, एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं अगर हम बहुत अधिक परिश्रम करें जल्दी जल्दी धन कमा लेंगे, फिर 20 साल बाद जाकर हम संन्यास लेंगे भक्ति करेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी ने सूचना दी है चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आपको उतना ही सुख मिलेगा जो कि क्या है आपका कोटा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए वो कहते हैं तुरंत शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। ये भाव कि हम अधिक परिश्रम करेंगे तो अधिक भौतिक लाभ मिलेगा ये गलत है। तो प्रहलाद महाराज हमें उत्तम भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अनेक श्लोकों के द्वारा यही भाव स्थापित हो रहा है। ध्यान से देखा जाए श्रीमद् भागवतम के प्रथम से अंतिम श्लोक तक एक ही भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। और क्या है वो भाव? शुद्ध भक्ति का, शुरू से अंत तक। ये नहीं कि ये पहला श्लोक है जिसमें यह भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। यही भाव प्रथम स्कंध में प्रस्तुत हुआ था, यही भाव सातवें स्कंध में है और यही भाव बारहवें स्कंध में भी है। पर भौतिक समाज में हम इतनी सरलता से विचलित हो जाते हैं कि अगर हम हमारी भक्ति को सुरक्षा करना चाहें तो ये अवश्य है हम बक्यादा सुने। इसलिए भागवतम के प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंध में कहा गया है, नास्ता प्रेयेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भावती। इसका अनुवाद क्या है किसे पता है इस प्रसिद्ध श्लोक का अनुवाद? जो व्यक्ति ध्यान से श्रीमद् भागवत सुनेगा उसकी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाएगी। जब हमारी भौतिक इच्छाएं दूर होती हैं तो क्या भाव स्थापित होता है? क्या भाव? शुद्ध भक्ति का ज्ञान, शुद्ध भक्ति का भाव स्थापित होता है। इसलिए इस्कॉन के केंद्रों में रोज भागवत का अध्ययन होता है। और अगर आप नहीं आ सकते तो भाई इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हो, तो ये अवश्य है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में ये स्थापित कर रहे हैं कि परम भगवान है असली भोक्ता। और इस विषय पर प्रभुपाद जी पांचवें श्लोक का प्रसिद्ध, पांचवें गीता के पांचवें श्लोक एक प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा श्लोक? भोक्ता नाम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वर। तो भाग का यह भाव है कि परम भगवान है असली भोक्ता। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि परम भगवान है असली भोक्ता, तो हमारा ये भाव रहेगा मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। और मन बुद्धि इंद्रियों का ही नहीं, जो संपत्ति है, जो सुविधा है, उसका भी उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। आज कितने लोग ये भाव रखते हैं? बहुत कम। धनी व्यक्तियों की कमी नहीं है विश्व में, भारत वर्ष विश्व के कई देशों में अरबपति की संख्या बढ़ रही है और सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। कहाँ? हिंदुस्तान में और चाइना में। पर ये जो अरबपति की संख्या बढ़ रही है, क्या इसका ये अर्थ है कि आप देखते हो कोने कोने में बड़े मंदिर बन रहे हैं, कोने कोने में ग्रंथ बिक रहे हैं, कोई संपत्ति का उपयोग कर रहा है भगवान के सेवा? नहीं, वो उपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। जब हम भगवान की संपत्ति को अपना संपत्ति मानते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम भगवान है असली भोक्ता, और जो असली स्वामी है, भक्त है, वो केवल स्वामी की सेवा करना चाहता है। और यहाँ प्रहलाद महाराज का एक और प्रसिद्ध श्लोक है जिसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उपयोग किया है। कौन सा श्लोक है वो? नाते विदुम स्वर्गते में विष्णु। राज महाराज कहते हैं सातवें स्कंद में लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं भौतिक सुख। भौतिक सुख के विषय में रूप गोस्वामी जी का कहना है किसी समय भी समाप्त हो सकता है। जैसे पिछले हफ्ते नेपाल में, दो हफ्ते पहले, गहरा भूकंप आ गया, अचानक मैं उस समय दिल्ली से बरेली जा रहा था और किसी ने फोन किया और कहा उत्तर भारत में भूकंप आ गया है। फिर पता लगा नेपाल में आया था, पर उसका असर दिल्ली तक पहुंच गया था। तो भूकंप भूकंप ने किसी से पूछा था अभी मैं भूकंप आ सकता हूं, एकदम अचानक आया। तो कदम कदम पर खतरा है, और हमारे वैज्ञानिकों का कहना है ये भूकंप इत्यादि की संख्या बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। और इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम प्रकृति के नियमों का विरोध कर रहे हैं। पृथ्वी पर आप इतना बोझा डाल रहे हो, और पृथ्वी पर इतना बोझा क्यों डाल रहे हो? क्योंकि हम सबकी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, और इन भौतिक इच्छाओं के को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटो, ये करो वो करो, और जिसके कारण प्रकृति आपको कष्ट देगी देगी और देते जाएगी। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं कि भौतिक सुख किसी समय भी समाप्त हो सकता है, सच झूठ किसी समय। आध्यात्मिक सुख के विषय में कहते हैं वो केवल बढ़ते जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रतिनिधियों को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें केवल 8 श्लोक छोड़ के गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो शिक्षाचार्य के बिल्कुल पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं? आनंद बुद्धि वर्धनम। पहले कहते हैं चैत्य दर्पण मार्जनम। भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है हृदय की मैल दूर होगी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का प्रभाव घटते जाएगा। पर इसका परिणाम यह होगा आनंद बुद्धि वर्धनम, कि आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये सोचता है कि भौतिक कार्यों के द्वारा अति सुख प्राप्त होगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। मान लो कोई प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार खिलाड़ी व्यापारी बन भी जाए, कब तक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा? हमेशा किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आध्यात्मिक सुख केवल बढ़ते ही जाता है, भौतिक सुख किसी वक्त भी समाप्त हो सकता है, और जो सुख ब्रह्मन प्राप्ति के द्वारा प्राप्त होता है और जो सुख ब्रह्मन प्राप्ति के द्वारा प्राप्त होता है उसको अगर आप लाखों गुना बढ़ा दो मल्टीप्लाई तो भी वो तुच्छ है। तो निर्णय यह है कि असली सुख प्राप्त हो सकता है केवल अगर हम परम भगवान की सेवा में जुड़े। ये है प्रहलाद महाराज का निर्णय, ये है शास्त्रों का निर्णय, ये है नारद मुनि का निर्णय। प्रहलाद महाराज ने जो भी उपदेश दिया ये निर्भरता किस पर? जो शिक्षा उन्होंने माता के गर्भ में प्राप्त की थी महान संत नारद मुनि जी के द्वारा। तो तात्पर्य प्रभु जी आगे ये भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने एक तो कहा कि हे भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरी सारी बौद्धिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं। आगे प्रहलाद ने यह भी कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके ही नहीं पर आपके सेवक आपके सेव दास की सेवा मैं कर सकूं। तो भक्तों की ये इच्छा रहती है क्या? ये नहीं कि केवल हम भगवान की सेवा करें पर साथ में भगवान के भक्तों की भी सेवा करें, ये है सबसे उत्तम भाव। अगर हमारे मन में ये भाव रहे हमें केवल भगवान की सेवा करनी है और किसकी नहीं, ये गलत है। ये भाव हमें केवल गुरु की सेवा करनी है भगवान की करनी है और किसकी नहीं, वो भी गलत। पर हमारे मन में अगर ये भाव है हमने सब संतों की सेवा करनी है, वो है भाव। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते, को भी भरत पदक का मनायो दास दास दास। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मैं केवल भगवान का दास नहीं, उनके दास के दास के दास के दास के दास का दास हो। ये है शास्त्रों का निर्णय। जैसे हमने कहा था, ध्रुव महाराज ने कहा कि अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा आपके उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत संगत में रहोगे तो गलत प्रभाव रहेगा। तो प्रहलाद महाराज के निर्णय के आदेश के अनुसार हमें जीवन को चलाना चाहिए। बौद्धिक समाज में हम कई बौद्धिक समाज के सफल व्यक्तियों को अपना आदर्श मान लेते हैं, हम हीरो बना लेते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे कई आदर्श बन सकते हैं, जिनमें एक है प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार दृढ़ होकर वो भगवान की सेवा में जुड़े थे। तो हमारा ये भाव है कि हम सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहें। और जो व्यक्ति जो भक्त निष्काम भाव से जुड़ेगा, वो भक्ति भक्ति के मार्ग में भगवत प्रेम को अनुकूल कर पाओगा। पर भक्ति में इतनी शक्ति है, आप ये उदाहरण ध्रुव महाराज में देखते हो। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था, किसके द्वारा? सौतेली मां के द्वारा। तो ध्रुव महाराज निकले थे घर से इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें एक ऐसा राज्य प्राप्त हो कि इतिहास में किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो। और ध्रुव महाराज ने इस उद्देश्य के साथ बड़ी गहरी तपस्या की। और तपस्या का ज्ञान किसने दिया था? नारद मुनि ने। पर ध्रुव महाराज को जब भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया और पूछा मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, ध्रुव ने कहा मैं निकला था घर से टूटे हुए शीशे की खोज में, अब मुझे क्या मिल गया है? असली हीरा मिला है। तो यह है असली हीरा, शुद्ध भक्ति। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जैसे हीरा को जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा चमक आएगी, है ना। आप ब्रास को पॉलिश करते हो, सिल्वर को पॉलिश करते हो, जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा चमक आएगी। उसी प्रकार जितने ध्यान के साथ आप प्रयास करोगे उतनी ही आध्यात्मिक चमक आएगी। आध्यात्मिक चंगत का मतलब उतना ही आपका आध्यात्मिक उत्साह बढ़ेगा। आध्यात्मिक उत्साह बढ़ेगा तो भौतिक उत्साह घटेगा, और अगर भौतिक उत्साह बढ़ेगा तो आध्यात्मिक उत्साह घटेगा। जब आप नियमों के साथ विधियों का पालन करते हो तो भक्ति खूबसूरत दिखती है और माया बदसूरत। और जब आप नियमों के साथ गंभीरता के साथ नियमों का पालन नहीं करते तो क्या अनुभव होता है? माया बन जाती है खूबसूरत और भक्ति बन जाती है बदसूरत। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कितना प्रयास आप करना चाहते हो। संतों ने, शास्त्रों, महान आचार्यों ने, भगवान ने हमें शुद्ध संदेश दिया है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का संक्षेप में यही निर्णय है क्या, कि हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं, आज ये चाहिए कल वो चाहिए परसों ये चाहिए, अगर वो प्राप्त नहीं हो तो हम कहेंगे क्या फायदा भक्ति का। तो प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक के तात्पर्य में और अनेक और श्लोकों में ये स्थापित किया है स्पष्ट कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, और हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा में जुड़े रहें। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। अगर आप ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करोगे तो फिर हृदय की मैल दूर होगी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं भजन क्रिया के पालन से अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब उन चीजों को दूर करना जो कि आपके शत्रु हैं आध्यात्मिक जीवन के, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य। अगर हम इनका प्रभाव को घटाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो उपाय है भजन क्रिया, नियमों का पालन करना, उच्चारण करना। आप सबका अनुभव होगा कि जब आप ध्यान से जाप करते हो पढ़ते हो तो आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है, और जब आप ध्यान से इन विधियों का पालन नहीं करते तो आध्यात्मिक उत्साह घटने लग जाता है। माया का हमेशा प्रयास रहता है हमें विचलित करने के लिए, और भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी की कथा में आजकल रोज भगवान को आप देख रहे हो चंदन से सजाया जा रहा है, तो ये चंदन यात्रा शुरू हुई थी माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी को बड़ा कठिन कार्य दिया। पहले तो उन्हें सपने में कहा कि मेरी स्थापना करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी ने भगवान की स्थापना की, बकायदा भगवान की पूजा शुरू की। माधवेंद्रपुरी इतने ध्यान से भगवान की सेवा करते थे कि भगवान को रात को सुलाने तक कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं थे। भगवान को सारा दिन उनकी उपासना करते थे, फिर रात को उनको सुलाकर जैसे आप देखते हो 9 बजे मंदिर हमारा बंद हो जाता है। 9 बजे मंदिर तो बंद होता है पर भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, फिर मंत्रों के उच्चारण से भगवान को सुलाते हैं पुजारी जी, फिर सुबह भगवान को जगाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी भगवान को सुलाने के बाद थोड़ा सा दूध पीते थे बस, सारा दिन और कोई खुराक नहीं। ये था उनकी सेवा का भाव। और भगवान ने उन्हें सपने में कहा माधवेंद्रपुरी मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तुम मेरे लिए चंदन लेकर आओ। और चंदन लेने कहाँ गए, उन्हें जाना पड़ा गोवर्धन से उड़ीसा तक। इतनी लंबी यात्रा, अगर आपको मंदिर के अधिकारी कहें चंदन लेकर आओ, आप कहोगे प्लेन की टिकट मिलेगी क्या? ट्रेन की टिकट मिलेगी। माधवेंद्रपुरी पैदल गए गोवर्धन से जगन्नाथपुरी तक पैदल गए। और जब भगवान ने देखा कि दृढ़ होकर माधवेंद्रपुरी ने उनके आदेश का पालन किया, और जब माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर लौट रहे थे 80 पाउंड चंदन लेकर लौट रहे थे, तो एक रात के लिए रमुना में रुके। और यहां रुके थे जाते होकर भी, और वहां भगवान ने उन्हें कहा मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, ये चंदन को वापस गोवर्धन तक लाने के लिए रमुना में ही गोपीनाथ को सजा दो चंदन के साथ। भगवान ने पहले तो माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली, बड़ा कठिन कार्य उन्हें दिया, और जब देखा कि माधवेंद्रपुरी ने सफलता से निभा ली है, फिर उन्होंने कहा अब चंदन यहां लाने की आवश्यकता नहीं। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो एक तरह से भगवान की भी परीक्षा होती है। कई बार कठिन कार्य दिए जाते हैं सेवा के लिए, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ प्रचार करो, नहीं 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 हमें तो मंदिर का वातावरण अच्छा लग रहा है, पर प्रचार का कार्य में ज्यादा तपस्या है। तो भगवान तो हमारी परीक्षा लेते हैं, ये देखते हैं मैं ये भाग मेरे लिए कितनी तपस्या करने को तैयार है। और दूसरी तरफ से माया आपकी परीक्षा लेती है, माया आपको विचलित करने का प्रयास करती है, माया आपको आकर्षित करने का प्रयास करती है, ये देखने के लिए एक सचमुच तुम्हारा आकर्षण है भगवान के प्रति या नाम का है। अगर असली है तो हम पास हो जाते हैं, और अगर नकली कमजोर हो तो हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने हमें ग्रंथों में ये भी कहा है कैसे भक्ति में बच सकते हो, कैसे भक्ति के मार्ग में विचलित हो सकते हो। रूपक गोस्वामी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री उपदेश रमृत, जिसमें केवल 11 श्लोक हैं, पर हर श्लोक का इतना गहरा अर्थ है कि हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो संक्षेप में प्रहलाद महाराज भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं इन श्लोकों में। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें इतने कष्ट अनुभव करने पड़े हैं, मांगो मैं से क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा, मुझे आकर्षित मत करो, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। अगर वर चाहिए तो आप ऐसा वर दीजिए कि मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं। और आगे जाकर प्रहलाद कहते हैं, एक और वर आपसे मैं मांगना चाहता हूं। क्या? मेरे पिता जो कि सूर भाव के थे, आप कृपा करके उनका उद्धार कर दो। तो यहां प्रहलाद का उस चरित्र बुद्धि आप देखते हो, उनके पिता ने हर रूप से प्रयास किया था उनका वध करने के लिए, पर अंत में बेटे ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो एक ऐसा वर दीजिए कि मैं पिता का उद्धार हो जाए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ये है वैष्णव का भाव कि जो उसे कष्ट भी दे, जब भी उसकी इच्छा रहती है कि मैं उसका शुभचिंतक बनूं। ये नहीं नैले पे डाला टेट फॉर टाइम। भक्त जो है अत्यंत सहनशील हो रहे थे, नाल पी सुनी चाहिए ना। तो हमें भी ये भाव अनुकूल करना चाहिए, और ये संभव है अगर हम ध्यान से श्रवणम करें और कीर्तनम करें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न पे रख सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो प्रश्न?
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद लेक्चर के लिए। प्रश्न था कि आप जैसे बोल रहे थे अभी कि जब कोई कठिनाई होता है तो उसमें भी तृणादपि सुनिश्चित के जैसे रहना चाहिए, लेकिन जैसे
कठिनाई होता है तो क्या
हमको भी यू शुड टॉलरेट, बट अगर हमारा वो आध्यात्मिक स्तर उतना नहीं है तो हम फिर अभी अपने स्तर में कैसे उसको कर सकते हैं कि
अगर बड़ी कठिनाई आ जाए तो प्रयास करो, भगवान सहयोग देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो योर क्वेश्चन इज, इफ देयर इज एक्सेप्शनल डिफिकल्टी, हाउ टू टॉलरेट इट? Nothing is exceptional. आप अगर भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को सह सकते हो। प्रयास करो, प्रयास करना हमारे हाथ में है। प्रभुपाद जी कहते थे, आप एक कदम उठाओगे भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे आपकी तरफ। दूसरे शब्दों में, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप भगवान चाहेंगे आपका सहयोग दे सकते हैं। भगवान जब देखते हैं ये व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से प्रयास कर रहा है मुझे प्रसन्न करने के लिए, भगवान से पूरी सुविधा देते हैं। ओके? यस।
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, is it okay to have any spiritual desires?
Yes, why not? If a spiritual desire is, I want everyone in Mumbai to become Krishna conscious. That's good. Desires have to be there in the heart. If you don't have spiritual desires, you'll have material desires. Am I right? So better have spiritual desires. You can't become desireless. That's not possible. Okay? All for impression. Okay. Hare Krishna.